अपने जीवन और व्यक्तित्व से अपने नाम को सार्थक करने वाले आदरणीय गीता दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित है। आपका हम तहे दिल से एक हाथ की ताली से स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। अपनी स्थिति को सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय में समान रखने का स्वभाव आपके जीवन में गीता की झलक दिखाता है। ऐसी दिव्य प्रज्ञा अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के गहन अभ्यास के द्वारा प्राप्त की है। 1969 में आप 14 वर्ष की अल्प आयु में ही ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। अपने विद्यार्थी जीवन में साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव आपने प्राप्त किया है, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आपने 14 वर्षों तक भावनागर में सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं भी प्रदान की। 1993 से आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय में नव निर्मित ज्ञान सरोवर एकेडमी में 17 वर्ष तक नियमित रूप से कहीं विशेष सेवाएं दी। आप राज्योग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है। आप विद्यालय के नियमित राज्योगी विद्यार्थी भाई बहने एवं टीचर्स बहनों के सघन प्रशिक्षण प्रोग्राम में भी कुशल प्रशासिका है। आप एक अनुभवी राज्योग एवं स्व प्रबंधक सेल्फ मैनेजमेंट प्रशासिका भी है। आप विंग्स के कार्यक्रम में अनेक विषयों जैसे कि नई जागृति आदिकालीन प्राचीन संस्कृति एवं उसका आधार आध्यात्मिकता आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इत्यादि आदि पर व्याख्यान करते हैं। भारत के अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक मेलों का आयोजन तथा संचालन करने का आपको विशेष अनुभव प्राप्त है। राज्योग शिविर कराने हेतु विशेष निमंत्रण पर आप भारत के अनेक स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं। आपने अमेरिका, कनाडा, लंदन, मॉरिशियस एवं अफ्रीका के 6 देशों की यात्राएं कर ईश्वरीय ज्ञान एवं राज्योग से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आप अपने इस लंबी ईश्वरीय जीवन यात्रा में प्राप्त हुए अनेक अलौकिक अनुभवों द्वारा सरल शब्दों में सर्व को आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहते हैं। अब ऐसी दीदी के सुमधुर वचनों से हम जानेंगे कि हम अचल अडो स्थिति कैसे बनाए। आदरणीय गीता दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। मुजफ्फरपुर है ना, वहां के भाई बहने सब आए, जहां 1975 में या 74 में मैं खुद 4 मास रही थी। रानी दीदी ने खास रख लिया था। उस समय इंडो नेपाल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन चला था, उस कैंपेन में मैं आई थी। दरभंगा, वहां भी मैं गई थी और मधुबनी भी गई थी। चार मास रहकर रानी दीदी ने हर प्रकार की छुट्टी दी थी मुझे सेवा करने के लिए। संदेशी दीदी भी वहां थी। बहुत पुरानी बातें सुनी थी और रानी दीदी का प्रयास था कि मुझे वहां रखे। फिर फ़रवरी में यहां मीटिंग थी तो दादी ने मुझे बुलाया। मैं वापस आई तो बिहार की भूमि मेरे अनुभव की भूमि है। दादी दीदी की पालना मुझे बहुत अच्छे से मिली। पर मेरे माताजी और पिताजी अमेरिका से जब आ गए तो दादी ने मुझे बुला लिया कि उनके पिताजी क्या कहेंगे, बिहार में क्यों भेजा है। हाँ, समस्तीपुर भी आई थी, अरुणा बहन थी। उस समय कृष्णा भाई के घर भी हम गए थे। इतने उमंग उत्साह वाले बहुत भाई बहने थे। म्यूजियम उस समय बन रहा था जो मुजफ्फरपुर में है ना, वो बना रहे थे। अभी तो आप रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं और अब तो कितने सेंटर खुल गए। और अब आप सभी पांडव भवन की भट्टी में पहुंच गए। हरेक ब्राह्मणों का लक्ष्य होता है कि एक बार जरूर पांडव भवन में रहे, क्योंकि पांडव भवन के कण कण में बाबा रहे हैं, इसलिए यहाँ के हर शय में, हर परिस्थितियों में बाबा मम्मा समाये हुए हैं। यहाँ दादियों ने कर्म भूमि है ये, और दादियों की भी तपस्या भूमि है। तो बाबा के तप का, दादियों के कर्म का वरदान भूमि यहाँ अनुभव होती है। ये ऐसी भूमि है जहाँ हम नेचुरल योगी बन सकते हैं। उस समय वहां कुछ भाई थे, अपने कैलाश भाई जो होम्योपैथी डॉक्टर है, और राजेंद्र भाई, ये दो पुराने भाई वहां थे। महेश भाई थे, हैं? राजेंद्र भाई कहाँ है? हाँ, आप थे। ये बहने तो बाद में निकली। हाँ, ये थी रागिनी अंजना। अभी तो बहुत विकास हो गया नहीं? उस समय 5 या 7 शेठानियां नहीं, सावित्री बेन, केजरीवाल और सावित्री बेन और भी कोई थी, बंका बहन, कईयों के घर भी गए थे। प्रफुल्ल भाई थे, विविध सेवाधारी वहां थे। सेंटर में रहने वाली बहनों में रानी दीदी, संदेशी दीदी और लक्ष्मी बहन डॉक्टर बनारसी की युगल थी, बाकी तो बहुत थे पर अब कोई याद नहीं। अनीता बहन, इंदिरा बहन अंजू बहन थे, जलेश्वर भाई थे, थोड़ा थोड़ा याद आता है। बहुत पुराने, अच्छा रघुवंश भाई थे, भरत भाई, चलो पुराने तो बहुत थे उस समय, अब सब नए चेहरे दिखाई दे रहे। बाबा ने हम बच्चों की स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए कहा है। बाबा ने उसके लिए जो ज्ञान दिया है वो हम सबको याद है। आत्मा अचल है, अविनाशी है, अनादि है, अमर है। गीता में भी लिखा है कि आत्मा की स्थिति हिलती नहीं, पानी भिगो नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, शस्त्र कोई छेद नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति के साधन है जो प्रकृति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा प्रकृति से परे है, अचल अडोल और स्थिर है। भल ये शरीर में रहती है, हमारे आसपास शरीर माना हलचल है, आत्मा माना अचल है। हर क्षण शरीर के कोश बदलते रहते हैं, इसलिए आत्मा को अचल अडोल कहा जाता है। समुद्र में जैसे आती जाती स्टीमर को लाइट हाउस एक स्थान पर रहकर सबको लाइट दिखाती है, वो ऐसा सिग्नल देती है कि स्टीमर को पता चलता है कि इस समुद्र के किनारे पत्थर है और उनको सीधा जाना है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमें लाइट हाउस बनना है और औरों को भी लाइट दिखानी है। एक बार स्टीमर में जो कैप्टन होता है, वो लाइट हाउस कहती है कि आप सीधे जाइए, तो वो कैप्टन कहता है कि आप सीधे जाइए। उसने कहा कि मैं तो लाइट हाउस हूं, मैं नहीं हिल सकता हूं, मेरे को यहां स्थिर रहना। तो वो कैप्टन को महसूस होता है कि मैं ईगो के कारण लाइट हाउस को कह रहा था कि तुम यहां से हट जाओ, तुम स्थान बदल लो। तो ऐसे हम लोगों के इस योगी तपस्वी जीवन में कई बार हम ईगो में आ जाते हैं। ईगो में आने के कारण जो स्थिर लाइट हाउस है उनको कहते हैं कि तुम जगह बदल लो, वो हमें कहता है इधर नहीं आओ, तुम रास्ता बदलो। तो कई बार हमारा अपना ईगो हमें परेशान करता है, हमें अपना बुद्धि योग बाबा से लगाना है जो अचल अडोल है, उनसे बुद्धि योग लगाएंगे तो हम भी अचल अडोल रहेंगे। तो हमें अपना ईगो हल्का करना पड़ता है। इस शरीर में आत्मा को कहते हैं आई ऑफ विजडम, आई ऑफ साइक्लोन। दुनिया में समुद्र में जो साइक्लोन्स आते हैं तब लाइट हाउस की आई हमें रास्ता बताती है। तो हमारी आई है शिव बाबा, हम खुद भी आई है और शिव बाबा भी आई है, इसलिए बाबा जो हमें रास्ता बताते हैं वो हमें सिखाते हैं कि तुम्हारी आई मेरे पर रहनी चाहिए, तुमको मैं रास्ता दिखाता हूं। तो अगर बाबा को देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो हमारी मनोस्थिति सदा अचल अडोल और स्थिर रहेंगे। बाबा अविनाशी है, स्थिर है, इसलिए हमारी बुद्धि की नजर हमेशा बाबा पर रहे। हमारी आंख सीधी परम धाम पर लगे रहे, परम धाम अचल अडोल है, इसके अलावा हमारी आंख कहीं भी न डूबे। तो हमारी थर्ड आई सदा परम धाम को देखती रहे, वो वहां सदा ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, उस ब्रह्म तत्व में हम आत्माएं रहती हैं। इस दुनिया में बुद्धि न लगे, यहां की जो प्रकाश है वो बदलता रहता है, यहाँ सुबह शाम दोपहर रात होती रहती है। तो यहाँ हम अपनी बुद्धि न लगाएं। अगर अपनी स्थिति हमें अचल अडोल बनानी है तो हमारी बुद्धि की नजर परम धाम में लगी रहे। सदा हमारी आंख सूक्ष्म वतन और ब्रह्मा बाबा पर लगी रहे, वो स्थिर है। संगम युग जब तक है ब्रह्मा बाबा है और सूक्ष्म वतन है, इसलिए ब्रह्मा बाबा पर और सूक्ष्म वतन पर हमारी नजर रहे। बाकी जो ब्राह्मण हैं, हमेशा कहते हैं हम पुरुषार्थी, तो ब्राह्मणों को देखकर हमें चलना नहीं है, हमारी नजर उनके गुणों पर रहे, उनके स्थिर पुरुषार्थ पर रहे। तो अगर ब्राह्मणों की विशेषता को देखेंगे, उनकी सेवाओं को देखेंगे, तो हमें हम सदा सेवा करते रहेंगे और हमारी नजर ब्राह्मणों की विशेषता पर और उनके गुणों पर रहेगी। अगर हम यहां आपस में पुरुषार्थ को देखेंगे, किसी के अवगुण पर देखेंगे, तो वो भी डगमग होंगे और हम भी हलचल में आएंगे। इसलिए एक दो को देख के नहीं चलना है। हमें बाबा कहते हैं सदैव महारथी को देखो, तीव्र पुरुषार्थियों को देखो और उनकी विशेषताओं को देखो। जैसे बाबा कहते हैं कि हमें कोई रास्ता चुनना है तो कौन सा रास्ता लेंगे आप? हाईवे चुनेंगे, एक्सप्रेस वे चुनेंगे और उसी पर स्पीड से हम जाएंगे। दूसरा, हम अपना व्हीकल जो चुनेंगे वो भी नया और अप टू डेट चुनेंगे। अगर हमारा अपना व्हीकल पावरफुल नहीं होगा, व्हीकल अगर अप टू डेट नहीं होगा, तो हम एक्सप्रेस वे पर नहीं जा सकेंगे। अगर हमें फास्ट जाना है, तीव्र गति से जाना है, तो हम एक्सप्रेस वे से जाएंगे। तो बाबा ने हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, हम जब आए थे बिहार में तो रास्ते अच्छे नहीं थे, अब बन गए होंगे नीतीश के जमाने में। तो बाबा भी कहते हैं कि एक्सप्रेस वे जो है यज्ञ का, हमें किसको फॉलो करना है? हाँ, अब तो वो उसमें बहुत जुड़ गए हैं। दादियों को देखेंगे, इतना बड़ा यज्ञ बनाया। बाबा जब थे तब तो 136 सेंटर थे ऑल इंडिया में, पर दादियों ने जब से संभाला अब तो 8000 से भी ज्यादा सेंटर्स, सब सेंटर्स और कितनी गीता पाठशालाएं खुल गई। भारत में 10-12 लाख भाई बहने बन गए। तो हमें जो हाईवे है दादियों का, बाबा मम्मा का, महारथियों का, उसको चुनना है। अब तो जब आप आए हैं तो महारथी सारे ही चले गए, जो महारथी भाई बहने थे, दादियां थी, वो सब एडवांस पार्टी में चले गए। अभी तो आदि रत्न सब चले गए। भारत में जो महारथी थे वो भी काफी चले गए। अब तो ब्राह्मण परिवार खाली हो गए, बाकी सब विंग वाइज बहुत भाई बहने हैं। अब जो जितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं उस जमाने के भाई बहने अभी कुछ कुछ है। बड़ी दीदियां भी काफी चली गई, जोन भी खाली हो गए, पर हमें बाबा का ज्ञान अपनी बुद्धि में रखना है। बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बुद्धि में रखना है, उन पुराने भाई बहनों को, उनके विशेषताओं को, उनके गुणों को बुद्धि में रखते हुए आगे बढ़ना है। आप देखते हैं नए नए बहुत भाई बहने आ गए हैं, वे भी बहुत पुरुषार्थी हैं। नए भाई बहनों के लिए बाबा क्या कहते हैं? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, फास्ट सो फर्स्ट। अब ऐसे तो कोई सैंपल ही होंगे ना, जरूर पुराने जो हैं वो फास्ट जाएंगे और फर्स्ट आएंगे। कोई एग्जाम्पल होंगे जो फर्स्ट और फास्ट आएंगे। उन नए भाई बहनों ने भी, उनको भी बाबा ने कहा है कि अगर आप अपना समय, संकल्प कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे तो आप भी जरूर लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे। ऐसे विदेश में भी बहुत भाई बहने हैं और अपने भारत में भी बहुत भाई बहन। उनको रिफाइन ज्ञान मिलता है, जो नए भाई बहने हैं उनको रिफाइन ज्ञान मिलता है। पुराने भाई बहनों को रिफाइन ज्ञान नहीं मिला। हमें याद है शुरू में जो मुरलियां आती थी वो फोटोकॉपी मशीन से आती थी, और बाबा की पुरानी मुरलियां बहुत कम भाई बहने एज इट इज सुनते हैं। अभी तो काफी शब्दों को निकाल दिया जाता है और उनकी जगह सोबर शब्द लिखे जाते। बाबा जो कड़ी भाषा बोलते थे वो नहीं लिखा जाता है, परंतु उसको सोबर शब्द बना के लिखा जाता है। तो अब मुरलियां भी हम माइल्ड सोबर और कोमल शब्द वाली सुनते हैं। तो आप अपनी अवस्था को भी जितना अचल अडोल चाहे बना सकते। यहाँ मधुबन में आए हैं, ये गोल्डन चांस है। आप यहाँ चार धाम की भी यात्रा करते होंगे, झोपड़ी में जाते होंगे, बाबा के कमरे में जाते होंगे, शांति स्तंभ पर जाते होंगे और हिस्ट्री हॉल में भी जाते होंगे। तो ये चारों धामों में आप आधा आधा घंटा भी बैठेंगे तो आप दो घंटा आराम से अपनी तपस्या कर सकते हैं। अभी तो हम जब आए थे उस समय हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन करते थे, मल्टीपल यूज होता था। ये हिस्ट्री हॉल भी बाद में आए, और ओम शांति हॉल तो बहुत बाद में बना। हम जब आए थे तो शांति स्तंभ भी खुला था, बीच में जो बाबा का स्तंभ बना है वो ही सिर्फ था, आसपास कुछ भी बना नहीं था। जो अभी बैठने का चारों ओर बना है ना, और इधर इंद्रप्रस्थ बना है, और फिर देखा जब आए थे तो हिस्ट्री हॉल ही था, पीछे जो दादियों के रहने का बना है वो नहीं बना था। तो हमने मधुबन भी वो ट्रेनिंग सेंटर बना था, और पहली भट्टी 69 में बाबा अव्यक्त होने के बाद बनी, 70 में दूसरी बनी हुई, और 71 में हमने तीसरी भट्टी की। में हमने एक मास की भट्टी की थी, चंद्रमणि दादी और अचल दादी दी। पुराने भाई बहने और पुराने सेंटर्स बहुत नियम मर्यादा से चलने वाले थे। हमने अचल दीदी को भी देखा था, रानी दीदी को भी देखा, वो लोग बहुत अच्छी तपस्या करने वाले। तो हमने ये लक्ष्य बनाया कि मुझे भी अचल दीदी जैसा बनना है। अचल एकदम हर परिस्थिति में अचल ऐसी तपस्या करते हुए देखा। वे भी सिंपल थे, हम भी सिंपल रहे। उनको कोई शौक नहीं था, हमें भी कोई शौक नहीं। तो हमारी फर्स्ट टूर में जो 71 के बाद हुई, 72 में, उस समय हम इन लोगों को ही देखा था। उनके सेंटरों में बिल्कुल सिंप्लिसिटी थी। अभी तो हमारी बहनें नई हैं और काफी उनके नए जमाने की चीजें भी है, परंतु हम नई चीजें नहीं यूज करते हैं। हम लोगों के समय दादियां हमें घड़ी भी पहनने नहीं देती। गुजरात के एक सेंटर में, वो भी जोन हेड सेंटर था, वहां मैं रही थी। वहां 10 घड़ियां मुझे दी, क्योंकि मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। तो सब भाई बहने देखते थे कि शायद इस बहन को घड़ी नहीं मिली है। तो 10 भाइयों ने घड़ी दी, परंतु मैंने पहनी नहीं। मैंने दीदी को ही दे दी कि आप रखो, कोई नई बहन आवे तो उसको देना, मुझे नहीं पहनना है। एक बार गुलजार दादी जी गुजरात में आए थे और उकाई डैम पर हमारी भट्टी थी टीचर्स की, परंतु दादी ने सबसे घड़ियां निकालवा दी। गुलजार दादी जी खुद पहनती नहीं थी, तो उन्होंने भी सभी दीदियों बहनों को घड़ी उतारने के लिए बोल दिया। बाबा कहते हैं ना, शरीर पर कान नाक अंगूठी में ऐसी कोई अंगुली में ऐसी कोई आकर्षक चीजें ना हो जो कोई हमें लूट लेवे। अभी तो सोने चांदी के बहुत मिलते हैं, एक बार ट्रेन में एक लेडी ट्रैवल कर रही थी, खिड़की के पास बैठी थी। आजकल तो बनावटी चीजें भी चमकीली आती हैं। तो उसके कान में ऐसे चमकीले कुंडल पहने थे, कान के बहुत सुंदर झूमर जैसा पहना था। तो उसने उसको चल पड़ी ट्रेन, तो लूटने वाले उसी समय लूटते हैं ना, तो उसने कान से खींचा और तो वो बहन ने बोला ये तो झूठे हैं, तो वो लुटेरा जोरदार थप्पड़ मारी और कहा झूठे क्यों पहन के बैठी। आजकल तो कोई सच्चा पहनता नहीं है, तो उसको लूटा भी, चमाट भी मारी और कहा कि झूठे पहन के क्यों बैठी। इसलिए बाबा के बच्चों को अंत की परिस्थितियों को देखते हुए अब सच्चे पहनना नहीं। हम तो कुछ भी नहीं पहनते हैं ना, अपने हाथ ये अंगलियां सब खाली है। हमको शुरू से कोई बात का शौक ही नहीं था, हम तो 16.5 साल के आयु में सेंटर में आ गए थे, 14 साल की आयु पर ज्ञान मिला और 69 में ज्ञान मिला, फिर 72 में हम समर्पित हो गए। तो बाबा ने उस समय बोला था कि 76 में विनाश होगा, तो हमने सोचा कि उस समय 11 मैट्रिक कहा जाता था, 4 वर्ष कॉलेज के होते थे, तो 4 वर्ष कॉलेज में पढ़े भी और विनाश हो जाए तो पढ़ने का मतलब क्या है। तो हमने सोचा कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम फर्स्ट आने के बाद भी हमने निर्णय कर लिया कि हम यज्ञ में समर्पित हो, तो हम यज्ञ में समर्पित हो। हमने यही लक्ष्य रखा कि अब लोगों को बाबा के सत्य ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ये कॉलेज की पढ़ाई कोई काम में नहीं आएगी। तो हम उस समय 72 में एग्जाम देके फर्स्ट नंबर लाके हमने छोड़ दिया कि पढ़ करके भी ये काम में ना आवे तो क्या करना है। हम गांव गांव, पापा पंचायत ऑफिसर थे तो वो गांव गांव ले जाते थे और बहुत अच्छी पंचायत की सभा भरते थे, अपना काम करते थे और फिर हम लोगों को भाषण करने के लिए कहते। तो सूरत से 71 में सेंटर खुला, हम माउंट आबू से ज्ञान लिया था, यहाँ जो म्यूजियम है ना वहां से ज्ञान मिला था, 69 में ज्ञान मिला और एक ही कमरा जो म्यूजियम का पहला कमरा है ना सिर्फ वो ही बना था और दूसरा कमरा जो 84 जन्मों की सीढ़ी है ना वो बन रहा था। पिताजी को तो ज्ञान की इतनी लगन लग गई कि मैं फर्स्ट आई उसका खुशी नहीं था। उनको तो ब्रह्मा कुमारी कब बन जाए वो नशा था। जब हम भट्टी में गए तो फुल बाह वाले वाइट ब्लाउज और साड़ी पूरा ड्रेस बना के ले आए और वो ड्रेस हमने पहना। हम भट्टी करके अपने गांव में ले गए। हमारे दो चाचा है और तीन फूफा है, तो सबके घर ले गए, ज्ञान का प्रवचन रखा। अब भट्टी करके हमने ज्ञान दिया होगा, कैसा दिया होगा, थोड़ा ही याद था पर वो ज्ञान दिया। जब 15 वर्ष के बाद दादा ने शरीर छोड़ा तब हम गांव में गए। ज्ञान में आने के बाद पिताजी एक भी बार गांव नहीं ले गए, न दादा के घर ले गए न मामा के घर ले गए। अभी तो सभी चाचा बुआ मामा सब विदेशों में है, हमारे दो भाई भी विदेश में है। पर हमें विदेश 3 बार गई मैं अमेरिका, परंतु मुझे कोई भी आकर्षण नहीं हुआ। जब मैं मधुबन दादी को मिलने आई तो मुझे ऊपर से नीचे तक मनोहर दादी ने देखा कि ये विदेश जाके आई है तो कुछ इसमें चेंज हुआ है, तो हमारे में कोई चेंज नहीं। मैंने कहा मैं थोड़ी वहां का सीखने गई थी, मैं तो बाबा का संदेश देने गई थी, ब्राह्मण भाई बहनों को बीके के क्लासेस कराने गई थी। तो मुझे कोई बचपन से कोई शौक ही नहीं। बाबा के बनने के बाद मुझे जो सीखने को मिला वो जीवन भर की पवित्रता। बाकी फैशन कुछ भी नहीं थी, मेरा लाइफ सिंपल था। तो कुछ भी मैंने विदेश से लिया भी नहीं, सीखा भी नहीं, मैं भारत में आके ऐसी ही मेरी जीवन रही। अभी आपके मुजफ्फरपुर की कुसुम बहन है ना, वहां कंचन बहन तो यहाँ है भारत में, अमेरिका में कुसुम बहन है ना, मिलपिटा कुसुम और मंजू तो यहाँ है ना सिकंदराबाद। सबके सेंटर में मैं गई हूँ, अपना सब कुछ देखें पर लक्ष्य अचल अडोल रखें। दादियों के साथ रहे, बड़ों के साथ रहे, हम उनकी कॉपी न करें, अपना लेवल पर रहे, पर बड़ों का जो जितना उनके पास यज्ञ के तरफ से सुविधाएं होती है, साधन होते हैं, पर उनका अनुकरण न करें। हमें उनके जैसी अवस्था बनानी है, सेवा करनी है, पर उन सबको देखकर कुछ भी डिमांड नहीं करनी, तो हम अपने पद से भी आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगी, अब तो आने का ही समय है, परंतु हमें अपना बाबा ज्ञान, बाबा कहते हैं ना कि साक्षी हो करके देखो, फरिश्ता हो करके देखो, अपनी अवस्था ऐसी बना लो कि कुछ भी इच्छा ना हो, कुछ भी शौक ना हो, तो आप अपनी स्थिति एज इट इज रख सकेंगे। ओम शांति। बिल्कुल नहीं, मुझे जरा भी विचार नहीं है। हाँ, मुझे तो ज्ञान ही इतना अच्छा लगा था कि मैं ज्ञान से ही पूरी प्रभावित थी। पापा की इच्छा थी पर मेरे मन में वो नहीं आया, पर ज्ञान इतना अच्छा मैंने स्टडी किया, स्वाध्याय किया कि ज्ञान पूरा मेरी बुद्धि में बैठा हुआ था। और शुरू से मेरा लक्ष्य भी यही रहा कि मुझे लेख भी लिखने हैं और अच्छे लोगों को अखबारों में देना है। मेरा उस समय 73 या 74 में मैं लेख लिखती थी इतने अच्छे कि गुजरात समाचार अखबार जो आता है, संदेश पेपर जो आता है, उसमें वो लेख छपते। और जब गुजरात के बड़े भाई हसमुख भाई परीख, उन्होंने अपना मकान दिया है और वो मुख्य भाई थे गुजरात के, उन्होंने दादी से, मैं भरूच से पार्टी लेके आई थी और दादी को मिलने गई तो वो कोई हैंड अच्छा मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा, दादी ने उनको कहा, लो आपका हैंड आ गए। और ऐसा कहकर मुझे बोला, पार्टी यहाँ भले रही, तुम जाओ अहमदाबाद, क्योंकि उनके घर में सेंटर हेड ऑफिस अहमदाबाद की, वहां शिफ्ट की थी और वहां लिटरेचर छपना भी शुरू हुआ था, तो उनको कोई हैंड चाहिए था जो लिटरेचर का प्रूफ चेक करे और करेक्ट करे। तो उन्होंने, दादी ने कहा, लो आपका हैंड आ गया, बहुत अच्छी गुजराती है इसकी, ये आपका काम करेगी।
ओम शांति। दीदी जी ने हमें उनका पूरा दर्शन कराया जीवन का। जी बताओ।
अमेरिका जब पहली बार मैं गई 91 में, तो उस समय 5 साल के वीजा मिले थे और उस समय हम गए थे, फिर वो वीजा हमारे पूरे हो गए। पिताजी को दादी ने कहा कि आप इसको अमेरिका ले जाओ, परंतु मुझे जाना नहीं था क्योंकि मैंने विदेश की सेवा भी देखी है, अब तो बहुत बढ़ गई पर 91 में तो शुरुआत थी, तो इतनी सेवा नहीं थी। तो मैं तो यहाँ गुजरात में रहती थी, बहुत सेवा देखी है, तो मैंने कहा कि आप कहते हैं दादी जी तो मैं ट्राई करती हूँ। मैं वीजा लेने गई परंतु उस समय मुझे वीजा नहीं मिला, तो मैं 93 में मधुबन में आई और तब से 94 पूरा वर्ष पांडव भवन में रही और ज्ञान सरोवर बन रहा था तो दादी ने मुझे रखा।
तो दीदी जी ने अपना पूरा जीवन का दर्शन कराया है ना, कि 14 वर्ष की आयु से अभी दीदी जी कितना हुआ,
70
पूरा किया। आप सोचो कितनी लंबी जर्नी है, एक आध्यात्मिक जर्नी में कैसी बातें आती है, वो जीवन दर्शन पूरा करके आज भले हमारे सामने हमारी वरिष्ठ दादियां नहीं है लेकिन हमारे लिए तो बड़े यही है, उसके जीवन से, उसके बोल से और उसके वाइब्रेशन से जो हमें मिल रहा है, तो ये अनुभव हो रहा है कि बहुत बहुत काल का अनुभव हमें वो दे रहे हैं। और मुझे सौभाग्य मिला है, हमारे परिवार को भी ये सौभाग्य मिला है कि हम भी गुजरात के हैं। दीदी के कनेक्शन में, दीदी जब 14 साल भावनगर थे तो उस समय बरवाला नजदीक ही है भावनगर से, और उसके कनेक्शन में गीता पाठशाला चलती थी, तो दादी को लेके दीदी ने ही वो पाठशाला खोली थी। तो इसीलिए दादी भी कहती थी बरवाला बल वाला है। और इतना सौभाग्य हमें मिला है कि दीदी ने बहुत मेहनत की है आजू बाजू के सब गांव शहर को उठाने की, और हर 15 दिन में दीदी हमारे घर आती थी और रात को रुकते थे क्योंकि और भी जगह क्लासेस कराना होता था। और जब जितनी भी दादियां आते थे तो एक टाइम दीदी भोजन वहां रखती थी, तो इसीलिए दादियों का हाथ से गिट्टी खाने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और इतनी
पाली दादा दादी बाबा से लास्ट मिलने वाली पार्टी थी
जी। और दादी जी याद करती है हमेशा के जो पनवेल में हमारी फूफा थी ना, तो बाबा का जब शरीर छूटा तो उसको ऐसा संकल्प चला कि मेरा शरीर छूटने वाला है, तो वो मधुबन में आ गए भाग के, और यहाँ आए तो बाबा का शरीर छूट गया। तो ऐसे पूरा परिवार भी बाबा मम्मा के समय का है, लेकिन दीदी की पालना भी बहुत मिली हमको, दीदी को बहुत नजदीक से देखा है। हम तो बहुत छोटे थे, फ्रॉक पहनते थे, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन क्या होता है, टोली के लिए प्यासे होते हैं, लाड़ प्यार चाहिए, टोलियां चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं समझ में। उस समय कोई समझ की बात नहीं थी ऐसी, लेकिन बहुत बहुत प्यार पालना मिला है दीदी का, और पालना देने में दीदी नंबर 1 थी। अभी तो मेरा कर्म भूमि बड़ौदा बन गया लेकिन सचमुच दीदी पर मुझे बहुत प्राउड है, बहुत 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 सिंपल जीवन, और हरेक के जीवन को उठाना, छोटे से लेके बड़े को भी बनाना, हरेक की विशेषता को देख के उसको कार्य में लगाना। और एक दीदी मुझे याद आता है शायद कि आपने भूत की आत्मा को भी कोर्स कराया है ना दीदी, वो बताओ ना
वो तो ज्ञानी आत्मा थी परंतु उसको ज्ञान लेना था, पवित्र जीवन बनाना था। इसलिए जब मैं बड़ौदा में थी तो हम बोडेली के पास से एक बस में जा रहे थे, तो उसने रास्ते में ज्ञान सुना और फिर उनका गांव आया तो वहां उतर गई। उनका पति विदेश का था परंतु बहुत धनवान था, डॉक्टर था, इसलिए उनका जीवन बहुत विषयी था। तो जब दो चार वर्ष में उनका शरीर खाली हो गया, खोखला हो गया, तो उसने लास्ट मोमेंट पर यही ज्ञान याद रखा और बाबा को कहा मुझे पवित्र जीवन बनाना है। उसका पति नहीं रहने देता होगा, बांधे ली थी और उसी आश में शरीर छोड़ दिया। तो वो उस आश को पूरी करने के लिए जहां सूरत में मैं सेंटर थी, तो वहां उस समय 73 में दिल्ली में बड़ा मेला था राम लीला मैदान में। ऑल इंडिया की मदद से वो मेला हुआ था, तो सूरत से भी काफी मदद गई थी। सूरत उस समय झंडिया बनाता था, पहला सेंटर था, और शिव बाबा के आकार की लड़ियां बनाता था। तो ये सब सामान लेके वहां की बहने भाई सब गए थे। इधर मैं और एक बहन थी जो उस समय मेरे साथ थी बड़ौदा में, वो बड़ौदा की थी और बड़ौदा में मेरे साथ गई थी। तो उस बहन के तन में प्रवेश करने का उसने प्रयास किया। ये बहन भी मजबूत थी इसलिए वो प्रवेश नहीं हुई, प्रवेश नहीं हो पाई। तो उसने अपना डरावना रूप दिखाया और चली गई उस दिन। फिर दूसरे दिन आई, दोपहर में हम सब सो गए थे, तो उसने अपना भयानक रूप बता के ये बहन को भी डरा करके उसमें वो प्रवेश हो गई। तो जब हमने देखा कि इसमें तो ये प्रवेश हो गई और कोई माताओं ने बताया कि कोई प्रवेशता हुई है, तो मैंने, गुरुवार का दिन था और उस दिन सेंटर में सभी भाई बहने अपना चार्ट लिख के भोग में रखते थे। तो हमने क्लास में, वो भी बैठी थी, सबको कहा कि सब अपना चार्ट पूरे हफ्ते का लिख करके दे दो तो भोग में रख देवे। तो वो भी उसने सुना, उस समय तो नहीं लिखा, घर सेंटर साफ करती रही, भोग अच्छी तरह से बनाती रही। तो उसने, जब मैं सब, गुरुवार तो थोड़ा देरी भी होती है ना भोग बांटना करना, तो मैं काफी समय के बाद अंदर गई और वो कहने लगी कि दीदी आपने सबको कहा ना कि अपना चार्ट लिख के दो, अपना हिसाब किताब लिख के दो, तो मैं भी अपना चार्ट बताऊं आपको। फिर उसने ये कहानी कही कि कैसे आपने ज्ञान दिया था, फिर मैं मर गई, अब मेरी इच्छा है कि मैं पवित्र बनूं, योगी बनूं। मैंने कहा आप लिख के दे दो, बाबा के भोग में रखेंगे और अब आप बड़ौदा में चली जाओ और कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज्ञान लेना 7 दिन का, फिर वहां रहना। तो जब जाने की बात कही तो उसने अपने भाई के तन में प्रवेश होके उनके पास से पैसे खींच करके ले आए। जैसे ये साधु संत करते हैं ना, चीजें ले आते हैं, वो कहीं भी कम होती है, वो वहां से खींच के ले आती है। तो ये पावर होते हैं थॉट पावर। तो मेरे तकिए के नीचे ये नए पैसे रखे थे, तो मैंने कहा कि ये पैसे कौन दे आया, यहाँ तो अपन सब लिखते हैं, है ना। पैसा कोई भी देता था उस जमाने में तो सब खर्च लिखते थे, सब आमदनी लिखते थे। तो मैंने पूछा ये कौन पैसा लाया, जो पैसा देते हैं वो तो हम नोटबुक में लिख लेते हैं। तो उसने कहा कि दीदी मैं ले आई हूं, मैं अपने भाई के तन में प्रवेश होके ले आई। मैंने कहा क्या जरूरत थी, मैंने इतना दिन बाबा के घर में खाया, आपसे कोर्स किया, सब पालना ली ना, तो मुझे उसका रिटर्न देना है। तो वो देकर के भी गई।
हाँ, कोर्स दीदी आपने सूरत में कराया।
हाँ,
अच्छा। और वो बहन ब्रह्मा कुमारी बहन में इंटर हुई कि माता के तन में?
वो गांव की थी और भोली थी एकदम, उसको
उसके तन में प्रवेश किया।
हाँ, अच्छा।
ये दीदी की विशेषता, कितना शांत और स्थिर होकर के। ये मेरी मदर ने बताया था मुझे कि दीदी पूरी आपकी बातें, और बोले कि दीदी ने भूत की आत्मा को भी सवेरे सवेरे कोर्स कराया है। बोले
कोई नहीं था, बाकी सब बहनें, इंचार्ज बहन, उनकी बाद की बहनें, सब बहनें दिल्ली गई हुई थी। रामलीला मैदान में जो मेला हुआ था उसमें मदद करने गई और मुझे कहा कि तुम यहाँ रहो, तो मैं तो वहाँ रही। मुझे खुशी थी क्योंकि रोज भाई बहने जाते थे, रोज का रिजर्वेशन होता था और रोज का सामान ले जाना होता था। कुछ बर्तन भी ले जाते थे, कुछ पुराने कपड़े भी ले जाते थे जो भंडारे में चाहिए। सब मदद ऑल इंडिया से जाती थी, पहले कहाँ इतनी ताकत थी। हाँ, सबके सर्व के सहयोग से ही सुख में संसार चलता था ना। ओम शांति। 2 मिनट।
हाँ जी, सभी दीदी के लिए 2 हाथ की तालियों से जोरदार दीदी को बहुत प्यार भरी दुआएं देते हैं कि दीदी हमारी सदा स्वस्थ रहे। सही बात है।
कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा